बहुलाशु नाम के जनक थे, तो सभी आत्मज्ञानी और शुद्ध भक्त राजा थे, सब सब जनक कहलाते थे। तो भगवान को उनके महल में गए और एक निर्धन भक्त के भी घर में गए, वो कौन था? श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण था, वो निर्धन था श्रुतदेव, है दोनों के घर में एक साथ गए, है ना, दोनों शुद्ध भक्त हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ अर्पित किया हुआ है भगवान के चरणों में। वो राजा है और वो जो है ना भिखारी है, वो भिक्षावृत्ति करता है, ब्राह्मण है, लेकिन दोनों जो है ना शुद्ध भक्त हैं और दोनों के घर में एक साथ भगवान गए। तो इस तरह से भगवान जो है समान होते हैं, कोई निर्धन और धनी का विचार नहीं करते भगवान। तो प्रभुपाद आगे बोलते हैं, प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी का दृष्टांत दिया जिन्होंने अपनी संपत्ति का 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दे दिया। हाँ, रूप गोस्वामी का जो जीवन चरित्र है उसमें आता है कि उन्होंने 4 हिस्से किए, उनके पास जितनी संपत्ति थी उसके 4 हिस्से किए, तो 2 हिस्से तो क्या किए, साधु संतों की सेवा में लगाया, है ना, 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दिया, और 25% यानी 1 हिस्सा अपने परिवार वालों को दिया और शेष 25% आपातकाल के लिए रखा। तो किसी सेठ को दे दिया था, सनातन गोस्वामी को सूचना दी थी कि कोई आपत्ति आए, कुछ संकट आए तो उस पैसे का इस्तेमाल कर लेना, तो सनातन गोस्वामी ने वो पैसा फिर निकाल करके और जेल से छूटे, जेलर को उन्होंने रिश्वत दी और किसी प्रकार से जेल से छूट करके चैतन्य महाप्रभु के पास गए। एकाएक प्रभुपाद उस धन के विषय में बोलने लगे जिसे उनके शिष्यों ने न्यूयॉर्क में गंवा दिया था और 25% अपने लिए रखा जिसमें आपातकाल में, क्योंकि जो ही धन मेरे हाथ से निकल जाता है मेरा बस नहीं रह जाता। हाल ही में हमने $6,000 गर्वी दिए हैं, यही नहीं न्यूयॉर्क में, इसलिए जो ही चेक हाथ से निकला तो वह गया, वो गया। इसलिए कुछ संपत्ति अपनी होनी चाहिए सुरक्षित, जो कि क्योंकि जो हाथ में है पैसा वो जा सकता है। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मिस्टर हाल को $6,000 दे दिए हैं और वो उसको जो ना जब्त करना चाहता है, है ना, तो हमारे पास में कुछ आपत्तिकाल के लिए कुछ है ही नहीं पैसा, है कि नहीं, तो इसलिए हर व्यक्ति को आपत्तिकाल के लिए पैसा रखना चाहिए। प्रभुपाद ने इस सारे से समझाया कि धन किस तरह चिड़िया की भांति हाथ से उड़ जाता है। मिस्टर प्राइस और मूर्ख लड़कों के कष्टप्रद उलझन भरे मामले का और कठिन श्रम से प्राप्त धन के चले जाने का संदर्भ आ जाने से प्रभुपाद क्षण भर के लिए रुक गए, फिर भी अपने व्याख्यान में आगे बढ़े। ये बड़ी चिंता की बात थी, तो प्रभुपाद को चिंता है, मिस्टर प्राइस और मिस्टर हाल ये बड़े बदमाश लोग हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, भगवान पर परमेश्वर पर ध्यान लगाना सहज है, श्रील प्रभुपाद ने कहा, ये कृष्ण है, कृष्ण का विग्रह यहाँ है, कृष्ण का रंग यहाँ है, कृष्ण का मुकुट यहाँ है, कृष्ण का उपदेश यहाँ है, कृष्ण का आदेश यहाँ है, कृष्ण की वाणी यहाँ है, कृष्ण हर वस्तु में है, हर वस्तु कृष्ण है, कोई कठिनाई नहीं है, क्या दिक्कत है। जो निर्विशेषवादी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कृष्ण पर ध्यान लगाना, किंतु यदि आप अपना ध्यान निराकार और हृदय स्थित परमात्मा पर ले जाना चाहें जैसा कि योगी करते हैं तो वह बहुत कठिन होगा, ये बहुत कठिन है, आप अपना ध्यान निराकार पर केंद्रित नहीं कर सकते। भगवद गीता में कहा गया है, क्लेशोध के तरसते साम अव्यक्ता सक्य चेतसाम, जो परम तत्व के निराकार स्वरूप से आकृष्ट हैं उनका कार्य बहुत कष्टप्रद है, वह मंत्र जपने नृत्य करने और खाने पीने की तरह नहीं है। जो निराकार का जो ध्यान करते हैं तो उनको सब जो है ना छोड़ने पड़ते हैं, मतलब सब बोलना बंद करना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन इसमें कितना आसान है भगवान के साकार विग्रह के ध्यान में कितनी आसानी है कि आप खूब बोलते रहो, खूब सुनते रहो, खूब देखते रहो, बातें करो, नृत्य करो और खाओ पियो, सब कुछ है। ये सब कार्य तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो बहुत कष्टप्रद हैं। तो भगवान ने इसको पुष्ट किया है कि इसमें कष्ट है। अभी इस श्लोक मैंने पढ़ा, कौन सा श्लोक है गीता में जिसमें बताया कि निराकार का ध्यान बहुत कष्टदायक है, तो ये आपके हमेशा मुंह में रहना चाहिए, है ना, ये पुष्ट करने के लिए। ये अच्छा शस्त्र है, ये वैष्णवों का अच्छा शस्त्र है, निराकार धारणा को खंडित करने के लिए आपके पास अच्छा शस्त्र होना चाहिए। क्लेशों उदय की तरह से शाम अव्यक्त आसक्त थे, अव्यक्त माने निराकार, निराकार में जो आसक्त हैं तो उनके विधि में बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया ऐसे खा पी नहीं सकते हैं जैसे आनंद के साथ में हम लोग खाते हैं पीते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाते पीते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं एक गुलाब जामुन खा करके भगवान के धाम में जाऊंगा और वो करते रहेंगे तपस्या। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ ये सब कार्य तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो बहुत कष्टप्रद है, और यदि आप निराकार के चिंतन में लग भी जाएं तो कई जन्मों के कठिन परिश्रम का परिणाम यही होगा कि आपको अंततो गत्वा कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। फिर क्या फायदा, अनेक जन्मों तक कष्ट किया और आखिर आए कहां, वहीं पर आए, तो इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूं, अभी ही क्यों नहीं कृष्ण की शरण ले लेते हैं, हैं? जैसे सीधे नाक पकड़ने के बजाय ऐसे नाक पकड़ो तो क्या फायदा है कि नहीं। तो ये भी श्लोक है ऐसा गीता में, कोई बता सकता है कि कई जन्मों के बाद फिर वो कृष्ण की शरण में आते ही हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो कई जन्मों को जो ना बर्बाद किया उन्होंने, इतना कष्ट उठाया और आखिर आए कहां, वहीं पर आए, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। तो इतना घूमते फिरते हैं और फिर आते अपने घर में, है ना, कृष्ण की शरण में आते हैं। तो अच्छा यही है कि बुद्धिमान बन जाओ और कृष्ण की शरण अभी ले लो, तुरंत ले लो। तो प्रभुपाद ने ये बताया कि परिणाम यही होगा, और इसमें भी है क्लेशो अधिक तरह से शाम अव्यक्ता शक्ति शाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहे मद्भिर्वापते। और उसके बाद क्या है, भगवान कहते ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हेते रता, हाँ इसके पहले है ना, ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हेते रता, आखिरकार वो मेरी ही प्राप्ति करते हैं, कोई कुछ और उससे ऊंची कोई प्राप्ति थोड़ी करते हैं, आखिर तो उनको आना पड़ेगा मेरे ही चरणों में। श्रील प्रभुपाद श्री भगवान के रूप में कृष्ण का चित्रण करते रहे, और इसके लिए भगवत गीता और ब्रह्म संहिता जैसे धर्म ग्रंथों का प्रमाण देते रहे। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का पहला पग स्वयं कृष्ण के उपदेशों को श्रवण करना है, किंतु प्रभुपाद ने आगाह किया कि यदि किसी ने कक्षा में ये उपदेश सुने और बाहर जाकर उन्हें भुला दिया तो वह प्रगति नहीं करेगा। आप जो कुछ सुनते हैं उसे औरों को बताना चाहिए। सुनने का मतलब क्या है, ये जो ज्ञान है ये ऐसा धन है जो जितना आप देते हैं उतना बढ़ता है, और आप इसको जितना छिपा के रखते हैं उतना खत्म, वो खत्म हो जाएगा। आपने जो सुना है अगर आप नहीं बताते, श्रवण कीर्तन प्रचार अगर नहीं बताते हैं तो वो जो है ना अंदर ही अंदर चला जाएगा। हैं? कैसे कैसे चला जाएगा, जैसे कि क्रैक, कोई बर्तन जिसमें दरार या थोड़ा छेद है तो दूध जो ना पूरा लीक हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि श्रवण श्रवण करने का यही मतलब है कि आप दूसरों को बताइए, या प्रश्न करना, प्रश्न करने से भी जो है ना श्रवण विधि जो ना होती है। हाँ और उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार उनके शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से सुनी बातों को बैक टू गॉड हेड में लिख रहे थे। देखो प्रभुपाद ने शुरू जब किया था बैक टू गॉड हेड तो खाली वे ही लेखक थे, जितने लेख थे सब प्रभुपाद जी ही लिखते थे और कोई नहीं था, पूरी वो खुद ही लिखते थे और खुद ही टाइप करते थे, फिर वो छापने के लिए देते थे, फिर उसका प्रूफ संशोधन भी करते थे हैं? और फिर उन किताबों को प्रतियों को स्वयं बेचते थे और पैसा इकट्ठा करके फिर कागज खरीदते थे। कितने संघर्ष से प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड शुरू किया था, इन आगे चल करके फिर उनके शिष्य लोग प्रभुपाद के प्रवचन जो सुना करते थे वो बैक टू गॉड हेड में छापते थे। तो ये दूसरों को बताना है। पुस्तकें छापना भी क्या है? कीर्तन है। और ये कीर्तन जो है बृहद मृदंग का नाम दिया प्रभुपाद ने, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसको बृहद मृदंग का नाम दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं और सुनी हुई बातों को दूसरों को बताने या लिखने के लिए व्यक्ति को विचारशील होना पड़ता है। तो श्रवण और मनन और कीर्तन, अगर आपने श्रवण किया है और आप कुछ लिखना चाहते हो उसको तो आपको फिर मनन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो श्रवण के साथ मनन, तब आप जो है ना उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि भागवत सप्ताह में भी धुंधकारी की घटना है कि धुंधकारी ने 7 दिन श्रीमद् भागवत श्रवण किया तो उसके लिए वैकुंठ से विमान आया। और गोकर्ण कहते हैं कि ये क्या, ये कैसा पक्षपात है, इस प्रेत के लिए तो विमान आया वैकुंठ जाने के लिए, और इतने बड़े बड़े श्रोता हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी श्रवण किया है, तो जितने श्रोता बैठे उतने विमान आने चाहिए। तो उन्होंने बताया कि श्रवण तो सबने किया है, जिस प्रकार इसने मनन किया है वैसा मनन सबने नहीं किया। और उसने मनन क्यों किया, क्योंकि धुंधकारी प्रेत के रूप में था, वो भूख प्यास का भी कष्ट सहन कर रहा था बहुत ज्यादा। है तो और श्रवण से उसका उद्धार होना था, तो वो श्रवण दिन भर श्रवण करता था और रात भर भी जो ना उस बांस के छेद में बैठा हुआ वो मनन करता रहता था, खाया पिया कुछ नहीं, ना सोना ना खाना ना पीना, तो मनन करता रहता है। बाकी लोग जो श्रवण कर रहे थे तो खाते पीते थे, सोते भी थे, तो निकल भी जाता था। तो फिर उन्होंने विष्णु दूतों ने कहा कि चिंता मत करो, इन्होंने जो श्रवण किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बार दोबारा सप्ताह करो, और उस समय जो है ना देखोगे जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उतने ही विमान आएंगे वैकुंठ से। तो फिर दूसरी बार जब सप्ताह किया तो जितने लोगों ने श्रवण किया भागवत उतने ही विमान आए, है ना? तो श्रवण का जो है ना फल कैसे है, वो मनन से होता है, तो विचारशील होना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने भी जो है ना अपने शिष्यों को ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में लगाया कि जो तुम सुनते हो प्रवचन उसको तुम छापो बैक टू गॉड में। अब छापना है तो हजारों लोगों के हाथ में जाएगी, तो उनको एक एक शब्द सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, है ना? एक एक वाक्य बनाने में भी उनको विचार करना पड़ता है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? तो ये जो है ना विचारशील होना, विचार करना है, बहुत जरूरी है। आप प्रभुपाद कहते हैं आप कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं और आपको विचार करना है तब आप दूसरों को बताएंगे, अन्यथा काम नहीं होगा। अतः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, ठीक है ना? श्रवण करना और कीर्तन करना भी जरूरी है, विचार करना पड़ेगा कि आपने क्या सुना, लेकिन नहीं श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च, और आपको पूजा करनी चाहिए, अतः पूजा के लिए इस विग्रह की आपको जरूरत है। हमें विचार करना है, बोलना है, सुनना है, पूजा करनी है, पूज्यश्च, और क्या ये हमें कभी कभी ही करना चाहिए? नहीं, नित्यता, नियमित रूप से। बहुत सुंदर रूपा जी श्लोक को समझा रहे हैं, श्रोतव्या कीर्तव्यश्च देह पूज्यश्च नित्यता। तो नित्यता की प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं क्या, प्रतिदिन प्रतिदिन नियमित रूप से क्या करना है, श्रवण करना है और कीर्तन करना है, ध्यान करना है और पूजा करनी है नियमित रूप से। नियमित रूप से मतलब प्रतिदिन नियम पूर्वक, यही प्रक्रिया है। इसलिए जो कोई यह प्रक्रिया अपनाता है वह परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत की यही स्पष्ट घोषणा है। आपको बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है प्रभुपाद के? कोई प्रश्न है? और जब प्रभुपाद के कोई प्रश्न है तो फिर उनको विचारशील होना पड़ता है कि नहीं? कथा के अंत में जब जो वक्ता है वो कहता है कोई प्रश्न है, तो फिर लोगों के दिमाग में एक झटका लगता है कि अरे कोई प्रश्न है तो मैंने क्या सुना, तो फिर वो सोचता है कि नहीं? तो प्रश्न करने के लिए व्यक्ति को बहुत सोचना पड़ता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई प्रश्न है? लेकिन प्रभुपाद के अलावा जितने व्याख्यान होते हैं, कहीं आपने देखा है ऐसा पब्लिक में जो है ना कोई जो है ना कहे कि भाई प्रश्न पूछो? नहीं, पब्लिक में भी जो है ना वो प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। अगर कोई पूछना भी चाहे तो नहीं पूछ सकता, बल्कि प्रश्न पूछने को ही उन्होंने वो अपराध मानते हैं, अपराध कहते हैं कि कोई प्रश्न अगर पूछ रहा है तो उसको ही अपराध कहते हैं कि प्रश्न नहीं करना चाहिए कभी। अगर कोई प्रश्न करे तो कहेंगे ए चुप, भगवान की कथा में प्रश्न करता है? भगवान की कथा में कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, खत्म। और उससे क्या होता है, भगवान कहते हैं अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, नष्ट हो जाता है। एक तो अज्ञानी मतलब जो नहीं सुनता है नहीं जानता है वो अश्रद्धालु, और तीसरा संशय आत्मा, संशय है तो वो भी नष्ट हो जाता है कि नहीं? तो संशय दूर करना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई प्रश्न है? एक किशोर ने हाथ उठाया और गंभीरता पूर्वक कहने लगा, अच्छा तो आपने बताया कि हम परम विधान का अनुगमन कैसे करें, हम आत्मा के आदेश का पालन कैसे करें, या आपका परमात्मा जो कुछ आदेश दे, मेरा तात्पर्य जो कुछ वो कहे, मेरा तात्पर्य यदि आप पूरा ध्यान लगाएं तो आप अनुभव करते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। उसने प्रश्न किया, वो ठीक से पूछ नहीं पा रहा है, लेकिन उसने अपनी बात को फिर भी मतलब प्रकट कर दिया ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कुछ नहीं वरन वास्तविक चीज। तो किशोर कहता है हाँ मेरा तात्पर्य है कि उस तरह है प्रभुपाद, इसलिए कुछ का प्रश्न नहीं है। किशोर कहता है हाँ मैं समझता हूँ प्रभुपाद, कुछ अस्पष्ट है, तुम्हें बताना है कि भाई कुछ क्या है। तो किशोर कहता है हाँ तो हम कहें कि, प्रभुपाद कहते हैं तुम उसे व्यक्त नहीं कर सकते, इसका अर्थ है कि तुम नहीं जानते, इसलिए हमें सीखना है, यही प्रक्रिया है। मैं उस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। यदि तुम्हें परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली बात श्रद्धा की है। तो उस युवक ने जब प्रश्न किया तो उसने प्रश्न क्या किया कि भाई हृदय के परमात्मा है, उनसे आपको उनके इच्छा के अनुसार काम करना है, तो वो कुछ क्या है, कैसे पता चलेगा? तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि वो कुछ नहीं है, वास्तविक चीज है। वो पता चले कैसे, आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे? श्रवण के द्वारा, श्रवण के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो पहली बात श्रद्धा की है, उसके बाद चिंतन आता है, तत्पश्चात तुम्हें भक्त बनना है और प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है, यही विभिन्न उपाय हैं। और जब तुम ब्रह्म स्तर से परमात्मा स्तर और फिर परम ईश्वर के स्तर पर पहुंचकर चरम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारा कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना रह जाएगा। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा आप पहले ब्रह्म साक्षात्कार करोगे, ठीक है, उसके बाद परमात्मा साक्षात्कार, उसके बाद भगवत साक्षात्कार। तो जब भगवत साक्षात्कार के धरातल पर आप आ जाएंगे तो फिर आप समझ पाओगे कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, कोई संदेह नहीं रहेगा कि कुछ 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 नहीं, वास्तविक आपको पता चलेगा। तुम्हारे क्रियाशील जीवन के ही पूर्णता है, यही प्रक्रियाएं हैं। निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति क्या है और हम उन्हें प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। हमें उनके विषय में सुनना है, उनके विषय में बात करना है, उनके विषय में सोचना है, उनकी पूजा आराधना करनी है और ये सब नित्य नियमित रूप से करना है। कितनी बातें प्रभुपाद बताते हैं नियमित रूप से करने के लिए, क्या क्या प्रभुपाद ने बताया है? सबसे पहले क्या,
श्रवण करना है, कीर्तन करना है, पूजन करना है।
सबसे पहले श्रवण करना और फिर उनके बारे में बात करना और फिर उनके बारे में सोचना और फिर पूजा आराधना करना और नियमित रूप से करना है। इससे तुम्हारी सहायता होगी। किंतु यदि तुम पूजा नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कुछ श्रवण नहीं करते, कुछ नहीं सुनाते, केवल लगातार कुछ कुछ के बारे में सोचते रहते हो तो वह कुछ भगवान नहीं होता। तो वो किशोर प्रश्न करता है, मेरा तात्पर्य है, अच्छा आप जानते हैं मैं युवक हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कुछ कहना चाहता था, मैं नहीं जानता कि मैं क्या। वो कह रहा है तो प्रभुपाद कहते हैं, नहीं जानता वही मैं बता रहा हूं, उसे तुम्हें इन तरीकों से जानना है। हम सभी नहीं जानने वाले हैं, इसलिए हमें जानना है, ये तरीका है। तो प्रभुपाद ने कितना अच्छा उत्तर दिया। वो कहता है मैं नहीं जानता, तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हें जानना होगा। फिर एक युवती ने प्रश्न किया, क्योंकि हम परम विधान अभी नहीं जानते, क्योंकि हम अल्प वयस्क हैं और इस क्षेत्र में नए हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर क्या कहते हैं, इसलिए तुम्हें सुनना है। पहली चीज है श्रोतव्यः, तुम्हें सुनना है। जब तक तुम सुनते नहीं तुम बात कैसे कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें सुनने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सुनो और तब बात कर सकोगे, तब चिंतन कर सकोगे। हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं, सुनने की, बोलने की, सोचने की और पूजा आराधना करने की। संघ का यही काम है। जब तक तुम सुनोगे नहीं बोलोगे कैसे। पहला काम है श्रोतव्य, तब कीर्तितव्यश्च, ध्येय पूज्यश्च नित्यता, यही क्रम है। तुम्हें श्रवण करना है और श्रवण करने पर दोहराना है, जप करना है, तदनंतर तुम्हें चिंतन करना है, तुम्हें पूजा आराधना करनी है, यही क्रम है। अभी और आप लोग सुनिए, अभी श्रवण करने की बात चल रही है, श्रवण करो अभी। अब उपेंद्र ने प्रश्न किया, स्वामी जी तो हमें श्रवण करना है, मैं समझ गया, पर क्या हमें बोलना है, या लंबे समय तक हमें श्रवण करना है तब बोलना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, या लंबे समय तक हमें श्रवण करना है तब बोलना है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, लंबे समय तक क्यों, मान लो कि तुम दो पंक्तियां सुनते हो, उन दो पंक्तियों को दोहराओ और हर चीज के अलावा तुम हरे कृष्ण सुनते हो, इसलिए हरे कृष्ण का जप कर सकते हो। इसमें क्या कठिनाई है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, तुम्हें सुनना और जपना है। अतः यदि तुम उन सभी प्रकरणों को याद नहीं रख सकते जिनके संबंध में हम भगवद गीता या श्रीमद् भागवत से सुनाते हैं, तो कम से कम तुम हरे कृष्ण याद रख सकते हो। इसलिए ये सबसे आसान तरीका है, हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो, अन्य चीजें अपने आप आ जाएंगी। अस्तु, ये हर एक के लिए संभव है। बच्चा भी हरे कृष्ण की आवृत्ति कर सकता है। कितना अच्छा प्रैक्टिकल, एक बच्चा भी बोल सकता है। कठिनाई क्या है, हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो। हम तुम्हें कोई कष्टप्रद या कठिन काम नहीं दे रहे हैं, तब हर चीज अपने आप आएगी। हम तुम्हें हर वस्तु दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम शुरू में समझते हो कि ये कठिन है तो तुम केवल ये कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण जपो। तुम वस्तुतः ये कर रहे हो, सुनना और जपना, ये प्रक्रिया तुम्हें सहायता देगी। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का मूलभूत सिद्धांत है बिना सुने हम केवल मन गढ़ंत करेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे और लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। श्रील प्रभुपाद रुक गए। दार्शनिक वार्ता जो लगभग पौन घंटे तक चलती रही काफी जटिल थी। वे थके नहीं थे और वार्ता आगे जारी रख सकते थे, किंतु अब उन्हें श्री विग्रह की स्थापना करनी थी। आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी हर वस्तु वहां मौजूद थी। क्या क्या चीजें? मंदिर, भक्तजन, ग्रंथ, श्री विग्रह, प्रसाद। आध्यात्मिक जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं क्या क्या हैं? मंदिर, भक्तजन और श्री विग्रह, प्रसाद और ग्रंथ। ग्रंथ। वे चाहते थे कि वहां एकत्र जो वाजन उसका लाभ उठाएं। वे पशुओं की तरह क्यों रहें और अस्पष्ट कुछ को टटोलते हुए आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचते रहें कि कुछ होता है, कुछ होता है। स्पष्ट बिल्कुल जो स्पष्ट नहीं है क्यों टटोलते रहते हैं? तो सीधी बात है, असली चीज हरे कृष्ण है। अगर आप कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हरे कृष्ण बोलो। उन्हें कृष्ण कृपा का लाभ उठाना चाहिए और जीवन को सफल और आनंददायक बनाना चाहिए। और इस निमित्त प्रभुपाद उनके अथक सेवक थे। क्या मतलब? प्रभुपाद अथक सेवक थे उनके। किनके? प्रभुपाद उनके अथक सेवक थे। वास्तव में प्रभुपाद ने सेवा भावना दी कि इनको मुझे भक्त बनाना है। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो हयग्रीव यहां आओ। प्रभुपाद ने एक थाली में भक्तों से एक बड़ी बत्ती सजवाई। जिस समारोह की योजना उन्होंने बनाई थी वह बहुत सादा था। ये जो भक्त हैं वो बत्ती बनाना नहीं जानते थे, इसलिए मोमबत्ती। देखो मोमबत्ती से शुरू कर जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि मोमबत्ती से भी आरती कोई करे तो वो स्वीकार कर लेंगे। तो एक बड़ी मोमबत्ती जो है थाली में सजाई। सजाई मतलब इस तरह से कि मतलब हिले डुले नहीं, वो घुमा सके आरती। तो सबसे पहला जो जगन्नाथ जी का मंदिर था, इस प्रकार की पूजा है। राधा कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती ना। प्रभुपाद ने कहा कि राधा कृष्ण की पूजा में विधि विधानों का बहुत कठोरता से पालन करना पड़ेगा, लेकिन जगन्नाथ जी की जो है ना पूजा कितनी आसान है। जगन्नाथ जी पूजा स्वीकार कर लेंगे। तो मोमबत्ती से जो है ना प्रभुपाद जी ने आरती सजवाई। जिस समारोह की योजना उन्होंने बनाई थी वो बहुत सादा था। देखो हवन भी जो कराया वो कैसे कराया? हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला का जाप कराया, ये हवन है। और आरती है मोमबत्ती से। भक्तों और अतिथियों को एक के बाद एक आकर भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रहों के सामने वृत्ताकार आरती करनी थी। प्रभुपाद बताए वृत्ताकार आरती, ऐसे घुमाना है आरती और बत्ती को जलाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, और जब कीर्तन हो रहा हो तो किसी को श्री विग्रह के सामने इस तरह करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने अपना हाथ घुमाया इस तरह से कि थाली को लेकर के ऐसे घुमाओ जगन्नाथ जी के सामने। प्रभुपाद ने अपना हाथ घुमाया और कहा, देख रहे हो कीर्तन चलता रहेगा और एक एक करके आरती मतलब जो थाली है वो घुमाना है। हयग्रीव बोले, हाँ हाँ। तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ कीर्तन के साथ। और जब एक व्यक्ति थक जाए तो उसे दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। बहुत लंबा कार्यक्रम है तो जब हाथ थक जाए तो दूसरे को दे दो। लगातार ये थाली है वो घुमाते रहो जगन्नाथ जी के सामने और कीर्तन करते रहो। जब वह थक जाए तो उसे अन्य को दे देना चाहिए। जब तक कीर्तन चले ऐसा ही करना है, कीर्तन के साथ इसे अभी करना है। समझ रहे हो? प्रभुपाद समझा रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ तुम शुरू करो और जब तुम थक जाओ तो दूसरे को दे दो। इस तरह से चलाते रहना है। ये उद्घाटन समारोह चला। श्रील प्रभुपाद ने अपने आसन से हयग्रीव को हाथ में जलती बत्ती के लिए श्री विग्रह के निकट पहुंचने की विधि बताई। कुछ लड़कियां अधीर प्रत्याशा में ही करने लगी, श्री विग्रह के सामने। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, अच्छा हो, अब कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभुपाद करताल बजाने और उस लोकप्रिय धुन के साथ हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे जिसका परिचय उन्होंने अमेरिका में कराया था। वो लोकप्रिय ध्वनि क्या है? हरे कृष्ण मंत्र की, तो प्रभुपाद करताल बजाने और उस लोकप्रिय धुन के साथ हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे जिसका परिचय उन्होंने अमेरिका में कराया था। ठीक सामने वे पुकार उठे हयग्रीव को श्री विग्रह के सामने खड़े होने के लिए संकेत करते हुए। ठीक सामने, अब वो जो लड़कियां थी वो बहुत चकित हो रही थी कि ठीक सामने कैसे जाएं, मतलब उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि हम लोग तो इतने अशुद्ध हैं, हिप्पी लोग हैं, और ठीक सामने वहां प्रभुपाद कह रहे हैं ये तो बहुत मतलब बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ा जो है अपराध कहीं ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा चकित थे। भक्तगण और अतिथि अपने पैरों पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। उनकी बाहें ऊपर को उठी हुई थीं और वे लय के साथ आगे पीछे झूम रहे थे और श्री विग्रहों की चमकती हुई मूर्तियों को देखते हुए कीर्तन कर रहे थे। चंदोबा के नीचे हरा लाल और पीला प्रकाश बारी बारी से कौंध रहा था जिससे भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलराम के असाधारण नेत्र प्रदीप फोड़ते थे। ये देखो भक्तों ने कितनी सी व्यवस्था की है, जब प्रकाश बदलता है, प्रकाश का रंग बदलता है भगवान के श्री विग्रह में, तो विशेष जो ना भगवान का भी उत्साह दिखाई देता है। मुकुंद जिसने प्रकाश की व्यवस्था की थी मुस्कराया और उसने स्वामी जी की स्वीकृति की आशा में उनकी ओर देखा। प्रभुपाद ने सिर हिलाया और वे उत्साह पूर्वक हरे कृष्ण गाने में लगे रहे। मुकुंद ये कौन है? मुकुंद गोस्वामी। तो मुकुंद गोस्वामी को लग रहा था कि मैंने जो किया है ये प्रभुपाद के विचार से कहां तक ठीक है। हा? क्या किया था मुकुंद ने? ये सारे में उन्होंने पूछ भी लिया, ये सारे में प्रभुपाद ने बता भी दिया, है ना। प्रभुपाद ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उत्साह पूर्वक हरे कृष्ण गाने में लगे रहे। युवा हिप्पी गान और नृत्य में उत्साह दिखा रहे थे। वे जानते थे कि कीर्तन आम तौर पर एक घंटा चलता है। कुछ की समझ में स्वामी जी की बात आ गई थी जब उन्होंने मन को परमेश्वर के साकार रूप पर केंद्रित करने को कहा था। उनकी समझ में वह बात भी आ गई थी जब उन्होंने स्त्री विग्रहों की ओर देखकर कहा था कृष्ण यहाँ है। दूसरों की समझ में बात नहीं आई थी, वे यही समझते थे कि हरे कृष्ण गाना और फूलों और धूप के धुएं से आच्छादित मुस्कुराते विशाल नेत्र श्री विग्रहों को देखना ही महान और आनंदप्रद कार्य है। तो कुछ लोग तो इतनी समझे कि भाई इसमें आनंद आ रहा है हमको, हा? लेकिन इससे ज्यादा नहीं समझे कि कृष्ण है साक्षात, वो नहीं समझ रहे थे। जब एक के बाद दूसरा भक्त भगवान की आरती कर रहा था तो प्रभुपाद प्रसन्नता पूर्वक इसे देख रहे थे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पारसार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोविंद आय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हरे कृष्णा। धन्यवाद।